بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. اس میں جماعت میں جانے والے حضرات کتنے حضرات اوپر کرو جو جماعتوں میں جا رہے ہیں، آپ لوگ آگے آ جاؤ بھائی، جماعت میں جانے آپ لوگ بھی آ جاؤ سامنے، ادھر 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 بھائی، یا پانچوں آدمی آ جاؤ. اور دوسرے بھائی، جماعتوں میں جانے والے جو حضرات ہیں، بہت سی بستیوں کے تو وصول ہو کر آ چکے ہیں، جہاں بھی ہیں یہاں آگے آ جاؤ. یہ جو مجلس ہماری ہے اس میں خاص طور پر ہدایات ہوتی ہیں جماعت میں جانے والوں سے، لیکن یہ ہدایات اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو سب کے لیے مفید ہے، کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے جماعت میں جانے والے اور بھی جہاں ہیں ان کو جلدی سے بھیج دیں، ذمہ دار حضرات فکر کریں اس کی. 15 جماعتیں ہیں اور صرف 5 آدمی یہاں پر ابھی موجود ہیں جانے والے، بقیہ ساتھی جہاں بھی ہیں جلدی سے ان کو یہاں پہنچا دیں. محترم دوست اور بزرگو، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے، اپنا نام لینے والا بنایا ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کا نام لینے والے ہیں. دنیا کے بہت سارے ذہین عقل مند، جن کو دنیا میں لوگ عقل مند کہتے ہیں، ذہین کہتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاوے، اللہ ہی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں اور اسی سے مانگیں جو سب سے بڑا دینے والا ہے. اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا، اپنا بندہ بنایا، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ دوسرا بڑا احسان ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. آپ کے امت میں ہونا ہمارے لیے بڑے فخر کی چیز ہے، بڑے شرف کی، بہت بڑی عزت کی چیز ہے. دنیا میں لوگ اپنے باپ دادا کے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں، اور دنیا میں لوگ اپنے باپ دادا کی جاگیر زمین پر فخر کرتے ہیں. دنیا میں لوگ اپنے باپ دادا کی کرسی، ان کی وجاہت، ان کے کسی عہدے پر ہونے پر فخر کرتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس سے بڑا فخر اور کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا کے جتنے تفاخر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سارے فخر ختم ہو جائیں گے، بلکہ قیامت کے میدان میں کلام پاک میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو، ہر ایک دوسروں سے دور ہو جائیں گے، بھاگیں گے کہ کہیں میرے پاس نیکیاں مانگیں گے ابھی. سب تعلقات سارے رشتے جو ہیں وہ ختم ہوں گے. ایسے دن بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولیں گے. یہ رشتہ ہمیں دنیا میں بھی کام دے گا, آخرت میں بھی کام دے گا. امتی ہونے کا جو رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ بہت بڑی نسبت ہے, قابل فخر ہے. باقی کون سی نسبت پر ہم فخر کریں؟ ایک آدمی کے پاس دسویں کی ڈگری ہے, بارہویں کا سرٹیفکیٹ ہے, گریجویشن کا سرٹیفکیٹ ہے, پھر اس کے بعد اس نے آگے جا کر MBBS کیا, اس کا سرٹیفکیٹ ہے. اب کسی جگہ اس کو دکھانے کی ضرورت پڑے گی تو کون سا سرٹیفکیٹ دکھائے گا؟ بولو نا بھائی, کون سا دکھائے گا؟ وہ کون سا سرٹیفکیٹ دکھائے گا؟ MBBS کا دکھائے گا کہ دسویں والا دکھائے گا؟ اور اگر دسویں والا دکھائے تو وہ اپنا ویلیو بڑھا رہا ہے گھٹا رہا ہے؟ اپنا ویلیو گھٹا رہا ہے. ایسے جس امت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دی ہے, حضور علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے, اور ہم کو کوئی پوچھتا ہے تو ہم اپنا ویلیو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تاجر ہیں, کوئی کہتا ہے ہم کاشکار ہیں, کوئی کہتا ہے ہم پٹھان ہیں, کوئی کہتا ہے ہم انصاری ہیں, کوئی کہتا ہے ہم منصوری ہیں. کوئی فخر کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا قابل فخر رشتہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے, آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے, یہ سب سے بڑی نسبت ہے, سب سے اونچی نسبت ہے. اس نسبت کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. ہر آدمی اپنی نسبت کا لحاظ کرتا ہے, ہر آدمی ماں باپ کی نسبت کا لحاظ کرتا ہے, باپ دادا کی نسبت کا, بھائی ہمارے باپ دادا کی بدنامی ہوگی ایسا کام ہم نہیں کرتے. ہمارے گاؤں کی نسبت ہے, ہمارے گاؤں والوں کی بدنامی ہوگی ہم ایسا کام نہیں کرتے. شریف آدمی ہمیشہ نسبت کا خیال کرتا ہے, اور شریف آدمی نہیں ہوتا اس کو اپنی ناک کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو کسی کی پرواہ نہیں, اس کے شرافت ہی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو نسبتیں ہیں, ایک تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بندہ ہونے کا کہ ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ بڑی بڑی ہمارے ساتھ نسبتیں لگی ہیں. ان نسبتوں کی قدر یہ ہے, بندہ ہونے کے ناطے ہم بندگی کریں. بھئی یہ جو حضرات ادھر بیٹھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے, یا سامنے آ کر بیٹھ جائے. یہ جو مجمع ایک طرف بیٹھ رہا ہے پنڈال میں, جو بھی آئے گا وہیں بیٹھتا جائے گا, ادھر خالی ہوگا ادھر فل ہو جائے گا. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر آ جاؤ. کچھ لوگ کھڑے ہو جاؤ, تعاون کرو, کھڑے ہو جاؤ. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ادھر اور پیچھے, اور پیچھے والے جو ہے, یا سامنے کافی جگہ خالی ہے. کوئی مجمع جوڑنے والی جماعت ہے پنڈال میں اور خطے وار جماعت کے ساتھی؟ بھائی خطے وار جماعت کے ساتھی اس میں کوئی ہے بیٹھے ہوئے میں؟ بھائی ہے کوئی خطے وار جماعت بنی تھی نا, کوئی ساتھی ہے خطے وار جماعت؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. بھلی شاہد صاحب, آپ لوگ پانچ دس ساتھی, فاروق بھائی آپ بھی جاؤ. مجمع جتنا ادھر ادھر ہے سب کو ذرا محبت سے, آپ لوگ آواز بلند کرنا زیادہ, ان کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ لو, ایک مشق کر لو پیر پکڑنے کی بھی. آج ادھر سے شروع کرو, ادھر سے, وہ جو کونے پر ہے, ذرا ترتیب کے ساتھ مجمع ہو. ہمارا ہر کام جو ہے ترتیب کے ساتھ ہے. نماز کی صفحے ہم کو بتاتی ہے ہماری اجتماعیت, ہمارا اتحاد, کہ نماز کی صف میں غریب ایک مالدار, ایک پڑھا لکھا ایک ان پڑھ, ایک جوان ایک بوڑھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے, اور آدمی کتنا ہی دور ہوئے معذور آدمی بھی آ کر صف میں کھڑا رہتا ہے, وہ ادھر ادھر کہیں جگہ نہیں بنا, صف میں آتا ہے. نماز زندگی, پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور خصوصاً ہماری دینی مجلس ہیں، دینی محفلیں ہیں، تعلیم کے حلقے، یہ کوئی مشاعرے کا پروگرام تھوڑا جو جہاں پہ بیٹھ جائے، یا کوئی سیاسی مجلس ہیں کہ جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، وہ خالی کان تک آواز پہنچنی چاہیے. ہم تو دین کے طالب ہیں اور طلبگار کو دیکھتے ہیں. طلب والا آدمی ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹ باری پر جو کھڑے ہوتے ہیں طلب والے ہوتے ہیں، دو کے بیچ میں ایک انچ جگہ نہیں چھوڑتے. پیچھے والا بار بار کہتا ہے بھائی پیچھے رہو پیچھے رہو، پیچھے سے دھکے مار رہا ہے، آگے جا رہا ہے. وہ کیا بھائی ذرا خیال کرو پیچھے رہو، بوڑھا آدمی، لیکن اس کو اتنی طلب ہے کہ ذرا صبر نہیں ہوتی، آگے ہی بڑھتا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کی نسبت پر ہم ایسے آگے بڑھنے والے بنے، نماز کی صفوں میں بڑھنے والے، کہ نماز میں پہلی صف میں جگہ ملے اس کے لیے آدمی آگے بڑھ رہا ہے، تعلیم کے حلقے میں سب سے آگے بیٹھے اس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، دینی مجلس میں کہیں بیان ہو رہا ہو وہاں آدمی آگے بڑھ رہا ہو. یہ آدمی کی طلب کی چیز ہے، اور طلب کے بقدر اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے. طالب کبھی محروم نہیں ہوتا اور بے طلب کو کبھی نصیب نہیں ہوتا. بے طلب کو نہیں ملا، روزی مل جاتی ہے. بے طلب کو بھی خدا کھانا دے دیتا ہے، اس کی طلب ہو یا نہ ہو اللہ روزی دے دے گا. لیکن دین جو ہے وہ طلب کے ساتھ، اور طلب بھی ہلکی پھلکی نہیں، کامل طلب. کامل طلب کے بعد اللہ دیتا ہے. اس لیے آپ لوگ کیا کرو انشاءاللہ کہ پوری طلب کے ساتھ دین سیکھیں گے. سیکھو گے انشاءاللہ. یہ ہماری محنت دین سیکھنے کی ہی محنت. تبلیغ کا یہ کام جو ہے کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، ممبر سازی کی محنت نہیں ہے کہ جس میں کوئی گروپ میں ممبر بنائے جاتے ہو. یہ امتی بنانے کی محنت ہے، دین کو عملی طور پر زندگیوں میں لانے کی محنت. کہ ہر آدمی پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ دین کو سمجھ کر قبول کرے، اور سمجھ سمجھ کر دین پر چلے. دین کو رسم نہ بنا لو، بلکہ سمجھے کہ دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہے، اخلاق کیا ہے، معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے. ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے آدمی سمجھے، سمجھے گا تو آدمی اچھی طرح عمل کرے گا. اور آدمی سمجھائی نہیں ہے تو جو آدمی سمجھائی نہیں ہے کہ آدمی کو آپ نے کہا بھائی کرانے کی دکان پر جا کر آدھا کلو گیہوں اور آدھا کلو چاول اور آدھا کلو مونگ کی دال اور پاؤں کلو تور کی دال، 10-15 چیزیں آپ نے اس کو بتائی، اس نے سنی لیکن سمجھا نہیں ہے. وہ کرانے کی دکان جائے گا کیا لے کر آئے گا، کیا لے کر آئے گا؟ وہ کہ اس نے سنا تو لیکن سمجھا نہیں کیا کیا لانے کا تھا، کتنا لانے کا تھا، تو وہ صحیح کام کر کے نہیں آئے گا. ایسے دین کو سنا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں اچھی طرح سے کہ دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، تو پھر آدمی دین پر صحیح عمل نہیں کر پاتا. اور عمل صحیح نہیں ہوگا تو دین پر ملنے والے نفع بھی نہیں ہوتے. اللہ نے دین پر تو عزت کا، روزی کی برکت کا، دنیا کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے. دین پر عمل کرنے پر اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے، روزی کی برکت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ تم میں جو بھی مرد یا عورت ایمان لاوے اور اچھے عمل کرے اللہ اسے خوشگوار زندگی نصیب کرے گا. اور پتہ نہیں کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ پر زندگیوں کے بننے کے وعدے کیے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. من اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اور وعدہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کروایا ہے، جو صادق الامین ہے، جن سے دشمنی کرنے والے مکہ والے بھی کہتے تھے کہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، جن کی شہادت دشمن بھی دیتے تھے کہ سچے ہیں امانت دار ہیں. ایسے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے وعدہ کروایا کہ کامیابی ایمان اور عمل کے راستے میں. جتنا ایمان و عمل زندگی میں آئے گا ہم کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور جتنی ایمان و عمل کی کمی ہوگی उतनी ही जिंदगी कामयाबी के रास्ते से हट जाएगी। तो ये जो मुबारक काम है, तबलीग का जो काम है, उससे यही इसी बात को हम सबको समझना है। शैतान दिमाग में बात ये डालता है कि फला नमाज नहीं पढ़ता, उसको जमात में भेजने का है, फला आदमी चोरी करता है, इसको जमात में भेजने का है, फला जो है वो माँ बाप का नाफरमान है, इसको भेज देने का है जमात, ये कुछ करता नहीं है काम धंधा, इसको जमात में भेज देने का है। ऐसा ठीक है, उनकी भी इस्लाह का सामान है यहां, उनकी भी इस्लाह का सामान है, लेकिन अभी हम सब अपने बारे में सोचें, क्या हम दीन को समझे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस दीन की तर्जुमानी की, जिस दीन की हुजूर ने तशरीह की है, और फिर आपने फरमाया कि तुम ऐसे दीनदार बनो जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं, ऐसी नमाज पढ़ो जैसी तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो, और ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए हैं, आमिनु कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए हैं, और सहाबा तुम्हारे लिए सितारों की तरह है, इनमें से हर हर आदमी सितारे के मानिंदे, जैसे सितारे से राह मिलती है, ऐसे इन सहाबा के जरिए से तुमको रास्ता मिलेगा। तो फिर हमको एहसास पैदा होगा कि नहीं, हमें भी दीन सीखने की जरूरत है, दीन हमें भी सीखने की जरूरत। दुनिया की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आदमी फौरन कह देता भाई नहीं हमको नहीं आती है, बड़ा ऑफिसर पढ़ा लिखा आदमी है, कंप्यूटर आया तो उसने कह दिया भाई मुझे चलानी है, मुझे सीखना पड़ेगा, तो वो 50 साल का ऑफिसर जो 25 साल से ड्यूटी कर रहा था, अब वो कंप्यूटर सीखने के लिए 25 साल के लड़के के पास जा रहा कि भाई मुझे सीखना है, तालिब बनकर जा रहा है कि मुझे नहीं आता है। 50 साल का आदमी कार लाता है नई लेकिन चलाना नहीं आता, तो 25 साल के ड्राइवर के पास सीखने के लिए जाता है, हालांकि उसकी आधी उम्र का है, लेकिन शर्माता नहीं, एतराफ करता है कि मुझे चलाना नहीं आता है, आपको सिखा दूंगा। 60 साल का बूढ़ा दादा मोबाइल लाया, उनको चलाना नहीं आता था, तो 10 साल के पोते से सीख रहा है कि बेटा मुझे बताओ जरा क्या फंक्शन है इसके, वो जरा भी शर्माता नहीं, घबराता नहीं, डरता नहीं, अपने जहालत का एतराफ करता है अपने 10 साल के पोते के सामने के बेटा मुझे तो चलाना नहीं आता, आप मुझे सिखाइए। वो पोता नखरे करता है, भाग जाता है, खेल जाता है, उसको पकड़ के लाता है, और उसके पास बैठकर आदमी सीखता है। लेकिन 50 साल हो गए हमारे, 60 साल हो गए, हम सोचे क्या हमने कलमा सीखा है, जो हमारी असास है, जिस कलमे पर अगर मौत आई तो जन्नत में जाएंगे, जो हमारी असास है, कलमा है, नमाज है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। इस्लाम रसूमात का नाम नहीं है, रस्म और रिवाज का नाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का नाम है, जो अल्लाह के वहां काबिल कबूल है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह की नजर में काबिल कबूल दीन और जिंदगी गुजारने का काबिल कबूल तरीका वो इस्लाम है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और जो आदमी भी इस्लाम को छोड़कर कोई और तरीके पर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसको हरगिज कबूल नहीं करेगा, ये अल्लाह का ऐलान है, और वो लोग आखिरत में हमेशा नाकाम हो जाएंगे, वो फिल आखिरत मिनल खासिरीन। तो ये तबलीग का काम, दीन समझने का काम है, कि हम दीन को समझें और दीन को हर आदमी अमली तौर पर सीखे। सबसे पहले अपना कलमा सही करना, फिर अपनी नमाज सही करनी। अकायद में ईमान के एतबार से सबसे बड़ी चीज कलमा है, उस कलमे के अल्फाज को भी ठीक करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसके कलिमात। इस कलमे से क्या चाहा जा रहा है, उसका क्या मकसद है, कि दिल की गहराइयों में इस बात का यकीन बिठाना है कि सब कुछ करता धरता एक अल्लाह है, جس نے زمین و آسمان چاند سورج کو بنایا ہے، وہی پوری کائنات کا اکیلا تنہے تنہا مالک ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، اس کے سب بنائے ہوئے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی اس کے بنائے ہوئے ہیں، انبیاء کو بھی اسی نے بنایا، اولیاء کو بھی اسی نے بنایا، پوری کائنات میں نظر آنے والی ہر وہ چیز جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیزیں جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتقاد کرنا اور اسی اللہ کی ذات کو سب سے اوپر سمجھنا، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کی صفتوں کے اعتبار سے، جیسے وہ اپنی ذات میں تنہے تنہا اکیلا ہے، ویسا وہ اپنی صفتوں کے اعتبار سے تنہے تنہا اکیلا ہے، کہ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور وہی زمین پر ہونے والے سارے کاموں کا خود مختار ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ما تسقطو من ورقۃ الا یعلمہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ درخت سے نیچے گرنے والا کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر نیچے نہیں آتا۔ پوری دنیا میں کروڑوں درخت ہیں اور ان کروڑوں درختوں پر اربوں پتے ہیں، ایک ایک پتے کے بارے میں اللہ جانتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور جتنے دانے زمین کے اندر ہیں، دانے اگاتے ہیں نا ابھی جیسے گیہوں کی فصل ہو رہی ہے، تو جتنے دانے اگائے لوگوں نے اور جو جنگلوں میں اپنے آپ زمین کے نیچے گئے ہیں، ان تمام دانوں کو اللہ جانتا ہے، کس دانے کی کیا ضرورت ہے، گیہوں کے دانے کو باہر آنے کے لیے کتنے دن چاہیے، چاول کے دانے کو کتنے دن چاہیے، اس کو کب باہر آنا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے ایک نظام چلا رہا ہے جس میں کہیں گیہوں اگ رہے ہیں، کہیں چاول اگ رہے ہیں، کہیں سرسوں کا کھیتی ہو رہی ہے، اور کہیں سبزی کی کھیتی ہو رہی ہے، کہیں زعفران کی ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے اور وہی پورا نظام کرتا ہے، وہی ایک ذات ہے اللہ کی ذات۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا اعتقاد کریں اور اپنی حاجتوں کو اس اللہ سے مانگیں، اور اس اللہ نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے، رابطے کے لیے، رابطہ بنوانے کے لیے اپنے بندوں کو نماز دی ہے، نماز کے ذریعے سے کنیکشن کرے، جیسے بڑے لوگوں سے رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے رابطے کا، بھائی خط کے کتابت خط کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، ٹیلی فون سے رابطہ کرتے ہیں، کسی سے بڑے سے رابطہ کرتے ہیں، ایسے اللہ سے رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور وہ ہر بندے کو دی، ہر کس و ناکس کو نماز دی۔ غریب آدمی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مالدار بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا اس پر ضروری کر دیا کہ بندہ ہے، نادانی میں نہیں پڑھے گا تو اللہ نے کہا نہیں تم پر فرض ہے، تاجر مشغولی کا عذر کر دے گا، اسی لیے اللہ نے اس پر فرض کر دیا کہ نہیں تمہارے اوپر فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ کسان تھکان کا عذر کر دے گا، نہیں بھائی تم پر بھی فرض ہے، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، اپنے بندوں پر رحم کیا ہے کہ اپنے دربار میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پانچ وقت موقع دیا، بلکہ اس نماز کو بندے پر فرض کر دیا کہ کسی حال میں بھی، جی چاہے نہ چاہے، کیونکہ نفس و شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس رکاوٹیں ڈالے گا، شیطان روکے گا نماز سے، لیکن اللہ نے فرض کر دیا کہ نہیں، کیا کتنی رکاوٹیں تمہارے راستے میں آوے، شیطان کتنے روڑے اٹکاوے، اور تمہارا نفس تم پر کتنا ہی بھاری ہو جاوے، لیکن پانچ وقت کی نماز کے لیے تو تم کو ہمارے دربار میں آنا ہی آنا ہے، پانچ وقت تو تم کو حاضری دینی دینی، اور وہ حاضری کی دے کر اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے، اس سے تعلق بڑھانا ہے، اللہ سے محبت بڑھانی ہے، اپنے مسائل کو اس کی بارگاہ میں رکھنا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے، بونس
ہر فرض نماز کے بعد ایک بونس، ایک دعا اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو پوری رغبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خوشی 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 خوشی، جیسے جمعہ کے دن آدمی پوری تیاری کر کے جاتا ہے. ہمارے تو ہر روز جمعہ ہے بھائی، جمعہ کا تو ایک خاص اہتمام ہے، مزید باقی ہر روز اسی اللہ کے پاس جانا ہے جس اللہ کے پاس جمعہ کے دن جاتے ہیں. اور آدمی حج میں جاتا ہے تو کتنی تیاری کر کے جاتا ہے. حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، نماز روزانہ پانچ مرتبہ فرض ہے. حج میں آدمی جاتا ہے خوشی خوشی، چھ مہینے پہلے تیاری کرتا ہے، کتنا پیسہ لگاتا ہے، اور حج کے دن آتا ہے کیسا خوش ہو کر، تیاری کر کے، لوگوں سے مل کر صلہ رحمی کر کے، لوگوں سے تعلقات بنا کر جاتا ہے، جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے. نماز روزانہ پانچ وقت ہے. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نماز کو سیکھنا ہے. نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز ایک روحانی کنیکشن ہے اپنے اللہ سے. کہ جیسے ہی ہاتھ باندھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے، اب ہمارا ایک روحانی کنیکشن جاری ہو گیا. جیسے آدمی ٹیلی فون پر بٹن دبا کر اپنا ریسیور اٹھا کر کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ایک کانٹیکٹ شروع ہو جاتا ہے، اور موبائل میں بغیر وائر کے کنیکشن ہو جاتا ہے. آدمی نمبر ڈائل کر کے، آدمی نے ڈائل کر دیا موبائل، اب اس کے بعد تھوڑی دیر میں کنیکٹ ہو گیا، تو اب آدمی یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے جیسے ہی ایمان والا بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو اللہ سے کنیکشن شروع ہو جاتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، جواب آتا ہے وہاں سے. جیسے ٹیلی فون پر یہاں سے بات ہو رہی، وہاں سے آتا ہے جواب، پھر یہاں سے آدمی بولتا ہے، پھر وہاں سے جواب آتا ہے. ایسے جیسے جیسے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا ہے، ہر ہر آیت پر اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ سنتا ہے. پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز کی ایک مشق ہے. جماعت میں چار مہینے نکل کر، چلے میں نکل کر، چالیس دن چار مہینے ایسی آدمی مشق کر لے، ایسی مشق کر لے کہ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پوری دنیا پیچھے رہ جاوے، اب وہ اور اس کا اللہ دو ہی رہ جاوے، نمازی اور اس کا اللہ دو ہی بچے، بس باقی سارے خیالات ختم ہو گئے. تو نماز کی مشق ہے وہاں پر، ایمان کی مشق، پھر نماز کی مشق. تیسرے نمبر پر علم کی مشق ہے. علم جو ہم سب کے لیے بنیادی ضرورت ہے، جیسے ہوا پانی ہمارے لیے ضروری ہے جسم کی پرورش اور نشو نما کے لیے، ایسے ہمارے دین کی پرورش کے لیے، دین کی نشو نما کے واسطے ایمان اور علم ضروری ہے. جیسے ہوا پانی کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، جہاں ہوا پانی اچھے نہیں آدمی ہجرت کر جاتا ہے، پانی نہیں ہے یہاں پر، بڑی قلت ہے، بڑی تنگی ہے، لوگ بستیاں کی بستیاں اجڑ گئی پانی کی وجہ سے. پہلے آبادی تھی، پانی ختم ہو گیا، لوگ ہجرت کر کے چلے گئے کہ پانی نہیں یہاں. یا بعض جگہ ہوا میں وبا آ گئی، پولوشن آ گیا زیادہ، تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی گاؤں آباد تھا، وہاں کوئی یہ وہ انڈسٹریل ایریا ہو گیا ڈکلیئر، تو وہاں پھر ہوا خراب ہو گئی، تو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، بھائی یہاں بہت کیمیکل ہے، ہوا وہاں کی اچھی نہیں ہے، تو لوگ چلے جاتے ہیں کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے. ایسے ہمارے دین کے لیے ایمان اور علم ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر زندگی کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں جو سرمایہ ہے، یا ایمان ہے لیکن جہالت ہے، نہ نماز کا طریقے کا پتہ ہے، نہ روزے کے طریقے کا پتہ ہے، نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ غسل کے واجبات کا پتہ ہے، نہ معاشرت کا پتہ ہے، نہ معاملات کا پتہ ہے، نہ اللہ کو آدمی اچھی طرح جانتا ہے، نہ رسول اللہ کو پہچانتا ہے. جہالت والی زندگی، جہالت اندھیرا ہے، جیسے اندھیرے میں سر ٹکراتے ہیں. اگر روڈ پر اندھیرا ہو تو ایکسیڈنٹ ہوں گے، گھر میں اندھیرا ہے تو کوئی بچہ یہاں گرے گا، کوئی وہاں گرے گا، کسی کو ٹھوکر لگے گی، کسی کو دروازہ سر میں لگ جائے گا، اندھیرا ہے. ایسے جس معاشرے میں جہالت کا اندھیرا ہوگا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے، وہاں روزانہ لڑائیاں ہوگی، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، جہالت میں حق ضائع ہو جاتے ہیں. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں حق ضائع ہو جاتے ہیں، وہاں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی. اس لیے تیسری محنت ہمیں کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنا علم سیکھنا ہے. علم میں एक फजाइल का इल्म है, तरगीब और फजाइल का, जिससे रगबत पैदा होती है, तरगीब और फजाइल का, जो जमातों में जाकर दोनों वक्त सुबह शाम की तालीम में घंटों भर बैठ कर हिकायत सहाबा, फजाइल नमाज, फजाइल जिक्र, फजाइल कुरान, फजाइल तबलीग और फजाइल सदक़ात में माल खर्च करने के फजाइल और हज के फजाइल और हुकूक के लाइन के बहुत सारे, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, उस लाइन की अच्छी बुनियादी ज़रूरी बातें उसमें जमा हुई है, तो उसकी तालीम में घंटों भर बैठ कर उसको सुन सुन कर अपने दिल की ज़मीन को नरम करना है। अभी दिल की ज़मीन में सख्ती है। एक नमाजी आदमी है, वो अपने माँ बाप से बात नहीं करता, उसको कहते भाई तुम्हारी हमारे नहीं, हम बात नहीं करेंगे उनसे। अरे भाई ये क्या बात हुई, जिस माँ ने जना है, 9 महीने पेट में रखा था, 2 साल दूध पिलाया, फिर परवरिश की, पखाना तेरा साफ किया है, क्या हो गया उस माँ से इतनी दुश्मनी हो गई? दुश्मनी नहीं हुई है, दिल में सख्ती आई है, दिल सख्त हो गया है, बाप से बात नहीं करता आदमी, अपने सगे भाई से बात नहीं करता आदमी, बीवी से मुंह चढ़ा के बात करता है, बच्चों को गालियां देता है, कोई बात हुई है? कोई जानवर को भी ऐसा करते तो नहीं देख, कोई जानवर भी ऐसा नहीं करते कि क्या कैसी इंसानियत कि वो बाहर दुनिया की चीजों को और आपस की लड़ाइयां और झगड़े और फितने इसको देखकर सुन सुनकर दिल में कसावट पैदा हुए, दिल सख्त हो गया है, दिल सख्त हो चुका है, इसको नरम करने की जरूरत है, इसको पानी देने की जरूरत है अच्छी तरह से। ये पानी फजाइल का पानी है जिसमें तरगीब और तरहीब का इल्म है, आमाल के फजाइल है, नेक काम करने के फजीलतें हैं और बुरे कामों पर वईदे हैं, उस नमाज छोड़ने पर यह नुकसान होगा, अल्लाह की याद न करने से दिल पर जंग लग जाता है, और माँ बाप के साथ रिश्ता नाता तोड़ने से यह नुकसान होगा, और करने के फजाइल हैं, रिश्ता जोड़ने की ये फजीलत है, नमाज पढ़ने की ये फजीलत है, वजू करने की ये फजीलत है, ये फजाइल का इल्म है, तो फजाइल की तालीम है इस मेहनत में। जो भाई जा रहे जमातों में दोनों वक्त जम कर तालीम में बैठे, अपनी जरूरत समझ कर बैठे, घंटों भर बावजू बादब बैठे, तालिब बनकर बैठे, तालिब बनकर बैठे, इधर उधर ने देखे तालीम में, हाँ इससे बड़ी चीज क्या है जहां अल्लाह रसूल की बात हो रही है, आपस की बातें ना करें उस, और उस वक्त चाहे तालीम के हलके में जमात में हो, मस्जिद में तालीम हो रही हो, या किसी जगह दीनी मजलिस में है, जुमा के दिन बयान सुन रहे हैं, मोबाइल चालू ना रखें, ये इंतहाई लापरवाही है हमारी, इंतहाई लापरवाही है कि एक तरफ अल्लाह रसूल की बात हो रही है जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, मन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुला रहा हो। आज भी उस बात से हटकर अपने मोबाइल में लगा हुआ है, उस बात से हटकर आदमी किसी और से बात कर रहा है, ये लापरवाही है, गफलत है, इसकी वजह से आदमी महरूम हो जाता है। अल्लाह ऐसी महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमाओ, आदमी को एहसास भी नहीं होता लेकिन आदमी महरूम हो जाता है, अल्लाह की नजर से गिर जाता है। इसलिए अमाल के अवकात में, नमाजों के अवकात में, तालीम के वक्त में, खुसूसन उस वक्त जो है मोबाइल अपने पास न रखें, और अगर है जरूरत की वजह से तो उसको बंद कर दें, और जमातों में जा रहे हैं वहां तो एहतियात करें कि वहां तो लेकर ही ना जावे साथ में। ठीक है, आदमी अपने घर पर होता है, कारोबारी मशागिल की वजह से आदमी अपने पास रखता है, और दुकान पर से सीधा मस्जिद चला गया तो बंद करके चला गया, लेकिन एक आदमी मुस्तकिल फारिग होकर अल्लाह के रास्ते में जा रहा है तो वो तो अपने घर पर छोड़ कर जावे, बीवी को छोड़ के जाता है, बच्चों को छोड़ के जाता है, अपना कारोबार छोड़ देता है, तो क्या बीवी बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत है मोबाइल से कि वो नहीं छोड़ सकता आदमी से, उसको अपने घर छोड़ दे, तो ये यकसू हो जाए, अपने आप को यकसू करें और जम कर तालीम के हलकों में बैठे। ये हमारी बुनियादी जरूरत, जैसे जिस्म की जरूरत रोजाना का खुराक है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, 3 वक्त रोजाना पाबंदी से अगर ये जिस्म को नहीं मिलता तो जिस्म कमजोर हो जाता है, बीच में अगर 1 वक्त का छूटता है, जैसे रमजान में देखते हैं आदमी ने सहरी की है, अब सहरी के बाद दोपहर का खाना छोड़ दिया, शाम को इफ्तार के वक्त तक आदमी की हालत कैसी हो जाती? बोलो ना भाई, कैसी हालत हो जाती? कमजोर हो जाता है आदमी। हालांकि बीच में एक ही वक्त का छूटा है खाना, सहरी तो खाई उस बीच में, एक वक्त का खाना छूटा है, लेकिन एक वक्त का खाना छूटने की वजह से आदमी के जिस्म में इतनी कमजोरी आ जाती है। तो आदमी की 5 नमाजों का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है, उसमें से रोजाना 5 छूट जाती है, उसका क्या हाल होगा? उसके दीन का क्या हाल होगा? किसी के बीच में 2 नमाजें छूट जाती और रोजाना छूटती जाती, एक दिन नहीं छूटी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उसका दिल जो है दिल मुर्दा हो जाता, आमाल की रगबत खत्म हो जाती, आमाल में फिर रगबत नहीं रहती, नमाज में जी नहीं लगता, अच्छे काम करने में तबीयत नहीं चलती। कहीं बुराई का तज़किरा होता है आदमी घंटों पर बैठता है, लायानी में देना होता है तो आदमी लाखों रुपए खर्च करता है, फिल्म देखने में, इसराफ करने में, शादी की बारात में, तफाखुर में, उसमें आदमी लाखों रुपए लगाता है। और मस्जिद में देने का था भाई 25 रुपए हमारे भी लिख लो और रसीद दे देना, आदमी 25 रुपए लिखवा रहा है, जो अपनी आखिरत के लिए देना। किसी गरीब को देना है तो आदमी 2 रुपए देता है, 2 रुपए दे रहा है किसी गरीब। सहाबा के जमाने के किस्से आप हिकायत सहाबा में भी और दीगर जगहों पर फजाइल सदकात में हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा के जमाने के खर्च करने के किस्से लिखे हैं। वो कैसे खर्च करते थे? अल्लाह के रास्ते में उन्होंने अपनी जानो माल को कैसे लगाया, यही तो चाह जा रहा है। हिकायत सहाबा और दीगर जहां भी सहाबा के किस्से फजाइल सदकात में, फजाइल नमाज में और फजाइल जिक्र में और फजाइल तबलीग में जहां जहां उनके वाकयात लिखे हैं, उससे यही मतलूब है कि ये उम्मत सहाबा की नकल उतारे। हमारे आइडियल वो है, हमारे नमूना वो है, हमारे आइडियल हमारे आबाव अजदाद नहीं है। अभी हम सब ने आइडियल बनाया है दादा को, किसी ने अब्बा को, किसी ने नाना को, किसी ने दादी को, किसी ने नानी को, इसलिए जब भी कोई मौका आता है तो लोग उनको याद करते, उनके तज़किरे करते हैं, उनके रस्म और रिवाज के, कि हमारे दादा ने घोड़े पर बैठकर शादी की थी, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। वो बारात लेकर गए थे 200 आदमियों की, हम भी 200 आदमियों की बारात निकालेंगे। हमारे अब्बा की शादी की थी दादा ने, तो पूरे गांव को खिलाया था और ऐसे खिलाया था, हम भी ऐसे खिलाएं। कोई नहीं कहता कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मी जान हजरत हफ्सा से निकाह किया तो ऐसा वलीमा किया था, हम ऐसा करेंगे। हमारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी जान हजरत उम्मे हबीबा से निकाह किया तो इस तरह से निकाह हुआ था, हमारा निकाह इस तरह होगा। इसलिए यह तालीम है फजाइल की कि जिससे हमें अपने आइडियल का पता चले। अगर हमारे बाप दादा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की नकल उतारी है तो हम उतारेंगे उनकी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमारे बाप दादा ने सहाबा की नकल नहीं उतारी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बड़ा मसला था यही तो था, जब आप अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की एक अल्लाह के होने की, तो मक्का के लोग यही कहने लगे कि भाई हमारे बाप दादा तो 360 की पूजा करते थे और ये हमारा भतीजा चचा कहते थे भतीजा मोहम्मद, ये कहता है कि अल्लाह एक है, कैसे कबूल कर ले हम? ये तो हमारे बाप दादा के तरीके के खिलाफ है, ये जाहिलियत का नारा है, जाहिलियत का नारा। पिछले कौमों ने कहा इन्ना वजदना अलैहा आबाना व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा है, हम तो उनके पीछे चलेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये सारे लोग खसारे में गए जिन्होंने ये नारा लगाया, जाहिलियत का नारा है। हमारी कौम, हमारी समाज ठीक है, कौम समाज ताउन के लिए एक दूसरों के हैं, बाकी इख्तिदा के लिए इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक तरीका अब कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए है। इसलिए इन फजाइल की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद जो काबिल इत्तिबा सहाबा की जमात है, सहाबा के वाकयात, उनकी नमाज, उनके रोजे, उनकी इबादत, उनकी तिलावत, उनका जुहद, उनका जुहद, उनका तकवा, उनका सब्र, उनका शुक्र, उनके अखलाक और उनकी पूरी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात को फिर सहाबा के बच्चे, उनकी औरतें, उनके जवान, उनके बूढ़े, उनके बीमार, उनके माजूर, उन सब के वाकयात अंदर लिखे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात हैं, आपकी अजवाज मुतहरात के वाकयात हैं, आपकी मुबारक बेटियों के वाकयात हैं, आपके दामादों के किस्से हैं, आपके घराने का तारुफ है उसमें, आपकी फूफियों के वाकयात हैं, आपके चचाओं के वाकयात हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और वो आइडियल हमारे लिए, इसलिए फजाइल की तालीम को जमात में जा रहे हैं वहां वो करेंगे, लेकिन हम अपने यहां अपनी मस्जिदों में रोजाना किसी एक नमाज के बाद आधा घंटा फारिग करें इसके लिए। दीन बेजारी का सबूत न दें बल्कि दीन के तालिब होने का सबूत दें कि हम दीन के तालिब हैं, दीन हमारी जरूरत है, हम मोहताज हैं। मस्जिद के मुसल्ली इमाम से, इमाम साहब के साथ बैठकर मशवरा करें कि हमारी मस्जिद में किस वक्त तालीम हो तो सबके लिए बैठना आसान है, असर के बाद हो जावे तो सबके लिए आसानी है, या ईशा के बाद सबके लिए आसानी है, ताकि सारे मुसल्ली जम कर बैठें और इन मुबारक हस्तियों को सुने। हम जरा सोचें, अकल अल्लाह ने दी है, दिन भर अखबारों में क्या पढ़ते हैं, सारे जितने ताजिर हैं दुकानों पर अखबार लेकर, कोई एक घंटा पढ़ता है, कोई दो घंटा पढ़ता है, कोई तीन घंटे, और बाजे इतने आदी हैं कि अखबार का कोई पेज नहीं छोड़ते और पूर्तियों को महफूज करके रखते हैं कि आज टाइम नहीं है, कल इसको पढ़ेंगे। हम क्या ले रहे हैं उसके जरिए से, हम क्या ले रहे हैं? एक आदमी खा रहा है, वो सोचे को क्या खा रहा है पेट में, पखाना खा रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, वो गिजा खा रहा है या दवा खा रहा है, दवा खा रहा है या बीमारी खा रहा है। हम जो मजामीन पढ़ रहे हैं अखबारों में और जो बातें हम आपस में कर रहे हैं चौकों पर, चौराहों पर, होटलों पर, बाजारों में, घर की बैठकों पर, हमारे आपस के चर्चे मुजाकरे क्या हैं कि फला जगह दो आदमियों को मार डाला है, फला जगह एक आदमी को इससे मार दिया, फला जगह बीवी ने उससे बेवफाई की और शोहर को जहर दे दिया है, यही भरे हैं अखबार इससे, और क्या है उसमें। वहां बाप ने बेटों को मार डाला और बाप, कई ये खबर आ रही है कि बेटों ने मिलकर बाप को मार दिया है, अब यही खबरें पढ़ी जा रही, यही सुना जा रहा, तो हमारे क्या जहन बनेंगे, हमारे बच्चों के क्या जहन बनेंगे। उसमें लव स्टोरियां हैं पूर्तियों में, वो हमारी जवान बच्चियां पढ़ रही है और हमारे जवान बेटे वही पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं कि फला जगह लड़कों ने लड़कियों के साथ बेवफाई की, और लड़कियां पढ़ रही हैं कि फला जगह लड़कों ने लड़कियों के साथ बेवफाई की है, और उसी की स्टोरियां और किस्से पढ़े जा रहे हैं। तो क्या जहन था, हम सोचे जरा, अल्लाह ने हमको अकल दी है, हम सोचे कि इन चीजों से हमारी और हमारी नस्ल का क्या जहन तैयार हो रहा है, उनके अजाइम क्या बन रहे हैं, और कुछ नहीं तो आखिरी दर्जे में भाई एक नंबर का दुनिया का मालदार है जिसके पास 1000 करोड़ की मिल्कियत है, ये दूसरे नंबर का मालदार, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये एक नंबर का खूबसूरत है जिसकी दाढ़ी नहीं है और जिसके बाल ऐसे कटे हुए हैं और इसकी आस्तीन यहाँ से फटी हुई है और इसकी जींस यहाँ से फटी हुई है, ये एक नंबर का खूबसूरत है और ये ऐसा है, उससे क्या जहनीत तैयार होती है। उसमें कोई अखलाक का तज़किरा है कि फला जगह बच्चों ने मिलकर अपने बाप की खिदमत की 10 साल तक, फला जगह माँ बच्चों ने मिलकर अपनी माँ को 10 साल पाला, खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि उनको जरा भी तकलीफ नहीं दी, फला जगह पड़ोसी गरीब था तो मालदार पड़ोसी ने उसकी जिंदगी पर कफालत की, फला जगह की बस्ती में 50 झोपड़े थे तो उस बस्ती के मालदार ने उन सबको मकान बना दिए, फला जगह 10 आदमी बीमार थे उनकी खिदमत के लिए 2 आदमियों ने जिम्मेदारी ले। कभी पढ़ी ऐसी खबर? वो सहाबा के किस्सों में ये है कि उन्होंने कैसे अल्लाह के साथ मामला किया, कैसे अपने नबी के साथ मोहब्बत का सबूत दिया और अपने नबी के साथ जानिसारी का सबूत दिया कि अपने नबी का कभी साथ नहीं दिया, भूख में आपके साथ रहे, प्यास में आपके साथ रहे, प्यास की शिद्दतें बर्दाश्त की लेकिन अपने नबी का साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह के रास्ते में जान दे दी लेकिन अपने नबी के दीन को पीछे नहीं होने दिया, अपना हाथ कट गया तो दूसरे हाथ में झंडा पकड़ लिया लेकिन अपने नबी के झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया, दूसरा हाथ कट गया तो दो पहलुओं के दरमियान दबा लिया लेकिन इस्लाम के झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। ये वाकयात उसमें मिलेंगे, अपने बच्चों को ये सुनाने हैं, अपने बच्चों को उनकी इसार के किस्से हैं, उनके हमदर्दी के वाकयात हैं। वो मदीने के उस सहाबी का किस्सा कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक मेहमान आया, आप अलैहिस्सलाम ने अपने घराने में मालूम करवाया कि भाई किसी जगह कुछ खाना हो तो मेरा मेहमान है, उसको खाना मिल जावे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीना में एक साथ 9 घर थे आखिर उम्र में, 9 घर थे आपके, 9 मकान, 9 बीवियां थी, 9 कमरे थे आपके, लेकिन सब जगह से ये खबर आई कि आपके घरानों में से किसी घर में एक आदमी का खाना नहीं, एक आदमी का। फिर आपने अपने सहाबा के दरमियान में ऐलान किया तो एक सहाबी उस मेहमान को अपने घर ले गए, घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि एक अल्लाह के रसूल का मेहमान लाया हूं, उसके लिए खाना बना दो। बीवी ने कहा कि आज तो हमारा भी खाना नहीं है, मेरे आपके लिए भी नहीं खाना, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा खाना है, बाकी आज मेरा और आपका भी फाका है। तो साहबी कह रहे अल्लाह के रसूल का मेहमान है, क्या करेंगे? तो बीवी कह रहे कि बच्चों को बहला फुसला कर मैं सुला देती हूं, और फिर अगर मेहमान देखेगा थोड़ा सा खाना है तो उसकी भी थोड़ी तबीयत चलेगी खाने की कि भाई इनके पास तो है नहीं, मुझे खिला रहे। तो उसने कहा कि मैं दिए को दुरुस्त करने के बहाने से बुझा दूंगी और तुम मेहमान के साथ बैठकर खाली खाली मुंह हिलाते रहना ताकि मेहमान को लगे आप भी खा रहे हैं, और जो खाना है थोड़ा सा वो मेहमान अकेला खा ले। और इसी तरह उन्होंने किया, बच्चों को सुला दिया और दिया बुझा दिया दुरुस्त करने के, दिया ठीक नहीं है उसको दुरुस्त कर रहे, रिपेयर कर रहे उसको, और मेहमान के साथ शोहर बैठ गए और वो मुंह हिलाते रहे, मेहमान खाते रहे, मेहमान का पेट भर गया। मेहमान को पता नहीं चला कि खाना इतना ही था, किसी को ये बात का पता नहीं, सिर्फ 2 मियां बीवी जानते हैं, लेकिन अल्लाह तो जानता था ना, हुजूर अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं, आप अपने घर पर हैं, अल्लाह अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह जानता था, अल्लाह जानता था क्या किस्सा हो रहा है। तो अभी तो वो सहाबी सुबह फजर की नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उससे पहले जिब्रील आसमान से आ गए, वही उसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा, ये ऐसे लोग हैं कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं हालांकि खुद खस्ता हाल है, खुद गरीब है, खुद फकीर है, लेकिन मेहमान आया तो मेहमान का इकराम कर रहे हैं। ये किस्से अपने बच्चों को सुनाने हैं, फिर किसी घर से शिकायत नहीं आएगी कि बाप के लिए खाना नहीं है, फिर बाप की बारी नहीं बनेगी बच्चों के घर जाने की, फिर माओ के लिए बारी नहीं होगी, अजनबी को इन्होंने खिलाया है, अजनबी को जिस अजनबी से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, उसको जानते भी नहीं थे, वो तो अल्लाह के रसूल के पास आए थे, अल्लाह के रसूल के मेहमान थे। ये फजाइल की तालीम इसके लिए है, इससे एक तामीर करनी अपनी नस्ल की, अपनी नस्ल की तामीर करनी है। ये जज्बात अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, ऐसे घराने वजूद में आए। जब तालीम शुरू हुई घरों में, आज जमातों के लिए घरों में लड़ाई होती है, बहू कहते हैं कि मैं खाना पकाऊंगी, सास करे नहीं मैं रोटी बनाऊंगी, कि जमात को खिला खिलाना है, अल्लाह के मेहमानों को खिलाने का है। मस्जिद में लोग लड़ाई कर रहे हैं, मेरे खाना होगा, वो कहने मेरे यहां से होगा, मस्जिद और जमात के पास के आप हमको मौका नहीं देते हैं दावत करने का, हम दावत करेंगे जमात, ये अल्लाह का फजल है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिदों में इसका निजाम हो कि आधा घंटा किसी नमाज के बाद हम बैठे तालीम करें, अपने घरों में तालीम जिंदा करें, अपने बच्चों को इतना वक्त दें, और ये उनकी तामीर के लिए, लोग अंग्रेजी हिंदी पढ़ाने के लिए बच्चों को 6-8 घंटे स्कूल भेजकर फिर उनके माँ बाप घर में उनको 1-2 घंटा लेकर बैठ के होमवर्क करवाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने के लिए, जो एक 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 मौहूम कामयाबी है, यकीनी नहीं है, और सिर्फ दुनिया की हद तक 2-5 पैसे कमा लेगा बच्चा, बाकी क्या ले लेगा वो, मुकद्दर के खाए कमाएगा वो। बहुत सारे अंगूठा छाप फैक्ट्रियों के मालिक, अंगूठा छाप है फैक्ट्रियों के मालिक हैं, दुनिया मुकद्दर की है, लेकिन दीन बकदर मशक्कत अल्लाह देता है अपने बच्चों पर, अपने पोतों पर, अपने नवासों पर, अपनी बच्चियों पर, पोतियों नवासियों पर, मेहनत करें कि इनको इनके दिलों में अल्लाह का यकीन आवे, इनके दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत आवे। और मोहब्बत की अलामत यह है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी स्टाइल करता है, उसकी इख्तिदा करता है, उसकी चाल चलता है, ये मोहब्बत की अलामत है, बाकी दावा मोहब्बत है, और दावा मोहब्बत मकबूल नहीं है। मोहब्बत के रास्ते में आदमी आजमाया जाता है, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है, उसके पीछे जाता है, उसको अपना आइडियल बनाता है, अगर हमारे बच्चे बच्चियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी कर रहे हैं, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, कपड़ा पहनते हुए, तो समझे कि इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत है, और अगर वो सोते जागते हुए किसी और की इब्तिदा कर रहे हैं तो फिर उनके दिलों में उन्हीं की मोहब्बत है। उनकी हुजूर की मोहब्बत बच्चों के दिल में पैदा करने का रास्ता यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजवाज मुतहरात, आपकी बनाते तय्यबात और आपके सहाबा के जो वाकियात हैं इनको सुनावे और उनके अंदर रगबत पैदा करें, उनके दिलों में शौक पैदा करें आपकी सुन्नतों का, इत्तिबा का। खुद अपनी जात से पाबंदी करें अपने घरों में। इसके लिए मश्क जमातों में होती है कि जमातों में जाकर हम खुद मश्क करें। सबसे पहले जाहिर बनता है आदमी के चेहरे पर, दाढ़ी आती है, सर पर टोपी आती है, कुर्ता आता है, जाहिर बनता है। फिर नमाज में सुन्नत के अहतमाम होता है, फिर खाने पीने में सुन्नतों का अहतमाम होता है, फिर सोने जागने में सुन्नतों का अहतमाम होता है, फिर चलते फिरते उठते बैठते जो मसनून दुआएं हैं उन दुआओं में हिसार है, हमारी हिफाजत है। आज जितनी तकलीफें हैं खारजी लाइन की, बहुत से घरानों में जिन्नात असर कर गया है, किसी को भूत चढ़ गया है और किसी को, उसकी वजह क्या है कि हमने अपना प्रोटेक्शन किया नहीं दुआओं से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें कदम कदम पर दुआएं बताई है, कदम कदम पर दुआएं, खाते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर जो लुकमा अंदर जाएगा उस लुकमे से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। एक किस्सा पड़ा एक आदमी का, वो एक मुल्क में गए, अरब मुल्क में, वहां एक सहरा में गए, ऊंटों का बड़ा एक मालिक था ऊंटों का उसके पास, ओके, उसकी उम्र 97 साल की थी, 97, और बहुत तंदुरुस्त था वो आदमी। तो ये कह रहा, मैंने बड़े मियाँ से पूछा कि आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई बीमार नहीं होने का तो तंदुरुस्त रहोगे, मैं बीमार नहीं होता हूं कभी भी। तो इस आदमी ने कहा भाई बीमार होना न होना आदमी के हाथ में थोड़ा है, बीमारी तो आ जाती है। तो बड़े मियाँ कहने लगे, नहीं भाई बीमार होना ना होना हमारे हाथ में। तो फिर उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जो लुकमा अल्लाह के नाम के साथ पेट में जाएगा वो कभी बीमारी नहीं फैलाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं जो लुकमा उठाता हूँ, एक लुकमा खाता हूँ या 10 लुकमे खाता हूँ, या जो घोंट भी पीता हूँ, वो बगैर अल्लाह के, जब से समझदार हुआ हूँ तब से बगैर अल्लाह के नाम लिए मैं अपने पेट में कुछ नहीं डालता हूँ, और यही मेरी तंदुरुस्ती का राज है, हिफाजत है अल्लाह के नाम में। हमको यही कहा कि हर काम को शुरू करके अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करें, बिस्मिल्लाह बोलकर खावे, कोई काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाह बोलकर करें। दुआएं बताई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खाने की, सोने की, जागने की, बैतुल खला में जाने की, निकलने की, जमात में इसकी मशक करनी है, सारी 24 घंटे की दुआएं, उसको याद करना है और सही सही याद करना है, गलत नहीं, सही याद करना है। इसलिए सीखने सिखाने में वक्त लगाना है, सीखने उसमें फजाइल की तालीम भी होगी और ये दुआएं सीखना होगा, कुरान सीखना होगा, तालीम व तअल्लुम सुन्नतों को सीखना है और फिर उसकी मशक करनी। फिर जिक्र और इबादत में वक्त लगाना है, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी है, सुबह शाम की तस्बीह 3 कलिमा, रोजाना सुबह 100 मरतबा, शाम को 100 मरतबा, रोजाना 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, रोजाना 200 मरतबा, और रोजाना 200 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को 100 मरतबा इस्तिगफार करके तौबा करनी अल्लाह से कि अल्लाह मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ। रोजाना 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को माफी मांगनी है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूँ, इस्तिगफार जिसे कहते हैं। और रोजाना कुरान की तिलावत, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सीखे, कुरान पढ़ना सीखे, एक एक आयत करके सही करे, एक एक हरफ करके उसको सही करे, लापरवाही ना बरते, भाई मुझे तो नहीं आता ऐसा करके छोड़ ना दे। मैंने अभी अर्ज किया आपको कि 50 साल का दादा 10 साल के पोते के पास मोबाइल चलाना सीखता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने जितनी उसकी जरूरत है उतना सीख कर छोड़ता है, और 50 साल का ऑफिसर 25 साल के उसके स्टूडेंट्स के पास जाकर वो कंप्यूटर सीखता है, अपनी जरूरत महसूस करता है, उसमें शर्माता नहीं है। हज आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जो दीन सीखने में शर्म करेगा वो दीन से महरूम रहेगा। शर्म न करें, अपनी जरूरत है तो शर्म न करें। जैसे लोग कहते हैं दुनियादार लोग, भाई कारोबार धंधे में शर्माने का नहीं, कुछ नहीं तो लारी निकाल दे आदमी, ठेला लगा दे, जो शर्माएगा वो कोई थोड़ा कमाएगा। दीन में शर्म न करें, सीखें, जो निकल रहे हैं वहां एक दूसरों से सीखें। जमात में अगर इंतजाम नहीं, नए साथी ज्यादा है, जिन मस्जिदों में जावे वहां इमाम साहब से वक्त मांगे कि इमाम साहब हमारी जमात है, हमको कलमा सीखना है, नमाज सीखने, थोड़ा सा वक्त आप दे दो। हम मौजदीन साहब को देखा, कोई मौजदीन साहब अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं तो उनसे कुरान सीख लें, या मकामी लोगों से नुसरत का मुतालबा करें कि भाई हमारी जमात कमजोर है, नए साथी हमारे साथ हैं, आप हमारी नुसरत करें, आप हमको सिखावें। मोहताज आदमी जाकर, फकीर आदमी गली गली जाकर भीख मांग के पेट भर लेता है। अगर दीन हमारे पास नहीं तो हम दीन को सीखने के लिए जहां जाना पड़ेगा वहां जाकर भी अपना दीन सीखेंगे, ये हमारी जरूरत है। बहाना नहीं बनाएंगे उसमें, मुझे नहीं आता है, मौत तक सीखते रहेंगे। हदीस में आता है जो आदमी कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है, उसको नहीं बराबर चढ़ता और अटक अटक कर सही करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको डबल सवाब देगा, दोहरा अजर देगा उसको, एक तो उसको पढ़ने का और दूसरा उसको पढ़ने में जो मशक्कत और तकलीफ हो रही है उस तकलीफ का उसको अजर अलग मिलेगा। अल्लाह कितनी कदर करता है, एक तो सीखा नहीं, उसका जुर्माना होना चाहिए इसको तो कि बुढ़ापे तक क्यों नहीं सीखा आप, अब तुम्हारा कबूल नहीं होगा, होना तो ये चाहिए था, लेकिन अल्लाह कह रहा है बुढ़ापे में सीखने बैठा है, अटक अटक कर पढ़ रहा है, अल्लाह कह रहा है इसको डबल सवाब देंगे, एक पढ़ने का सवाब और दूसरा अटक अटक कर पढ़ने में जो मशक्कत हो रही है उस मशक्कत का सवाब अल्लाह अलग देगा। इसलिए कुरान को सही करें, फिर पहले सूरह फातिहा, फिर छोटी छोटी दो सूरतें कर ले ताकि फर्ज नमाज सही हो जावे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े और पूरे कुरान को सही करने की कोशिश करें। किताब इलाही है, अल्लाह का कलाम है, दस्तूर हयात है, अव्वलीन और आखरीन का इसमें इल्म है, जो कुरान में जितना इल्म है सारी दुनिया का सारा इल्म और नॉलेज जमा करके एक तरफ रख दे, कुरान की एक आयत के बराबर नहीं हो सकता, इतना इल्म इसके अंदर। अब दुनिया बनी वहां से लेकर दुनिया पूरी होगी वहां तक, फिर कयामत के दिन का, कबर, हशर, नशर, जन्नत और जहन्नम का कितना ज्यादा इल्म कुरान में है, लेकिन उस कुरान से हम पुश फेरे हुए हैं, जो असल इल्म का मर्जा है, इल्म का मंबा है, जहां से इल्म फूटता और निकलता है, वो किताब अल्लाह ने हमें दी है, वो किताब अल्लाह ने हमें दी है, उस किताब से पीठ फेरे हुए हैं, उस किताब को सही नहीं किया। जो जमातों में वहां सही करेंगे, बाकी जो भाई घर जा रहे हैं वो अपने घर जाकर अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास, हरी साहब के पास, हाफिज साहब के पास, कोई सही कुरान पढ़ने वाले के पास रोजाना 15 मिनट बैठ जाए, ज्यादा नहीं तो 15 मिनट फारिग करें। अगर महीना दो महीना 15 मिनट बैठ गए तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 15 मिनट वो रोजाना के 15 मिनट आपके 2 महीने में आपका कुरान सही करवा दें। फिर रोजाना उसको पढ़ते रहे, एक एक पारा रोजाना पढ़े, अल्लाह की किताब समझ कर मोहब्बत के साथ कि मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है जो हमारे महबूब पर अल्लाह ने उतारा है और कयामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत का कलाम है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन को रास्ता बताता है, फासिकों के लिए रास्ता नहीं है, जो अपने आप को फिस्क व फुजूर की जिंदगी पर बाकी रखे, जो अपने आप को गुनाहों पर बाकी रखे, अल्लाह से है। कुरान में जो हमारी हिदायत है अल्लाह से तलब करें, उस किताब की तिलावत खुद भी करें, अपने घर की औरतों को कुरान की तिलावत की उनको दावत दे कि वो घर में कुरान पढ़े, उससे घर से फसाद खत्म होगा और गलत असरात घरों से खत्म होंगे, शयातीन और जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे। जहां किताबें हिदायत पढ़ी जा रही है, जहां किताबें शिफा पढ़ी जा रही है, कुरान शिफा की किताब है, हिदायत की शिफा है, हिदायत की किताब है जो दिलों को भी शिफा देती है और जिस्म को भी शिफा देती है। अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, अपने छोटे बच्चों को मकतब में भेजें, बच्चों को मकतब भेजें ताकि वहां जाकर वो कुरान को बचपन से ही सही करें, मकतब की तालीम को अहमियत दें। जिन देहातों में मकातिब नहीं है वो देहात वाले फिक्र करें कि भाई हमारे बच्चों की तालीम का क्या होगा, हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा हमारे बच्चों की जरूरत कुरान पढ़ना है, कुरान किताब इलाही है। अगर उन्होंने कुरान पढ़ा है और उनकी अकाइद सही है तो ये जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी भूखे नहीं रहेंगे, अल्लाह इनकी रोजियों में बरकत दे देगा। लेकिन अगर उन्होंने कुरान नहीं सीखा है, उन्होंने कुरान नहीं सीखा, जिंदगी नहीं सीखी है, चाहे दुनिया के कितने उलूम सीख लेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। अपने बच्चों को मकतब भेजें, अहमियत दें, मकतब के औकात में उनको साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहना कर और
उनको साफ सुथरे बावजू करके उनको भेजा भी से कुरान की अजमत उनको सिखावे, उनके दिलों में उतारे और उनको कुरान सिखावे, अपने घर के माहौल में तिलावत का माहौल बनावे, जिक्र का माहौल बनावे, इबादत की फिजा बनावे। वरना वो जिंदगी है जिसमें अल्लाह की इबादत ना हो, जिसमें नमाज नहीं, जिसमें अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं, जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं है और सुबह शाम लहव लाइब है, लायानी है, ईरान तुरान है, ये जिंदगी इसमें दिल उजड़ जाते हैं, दिल की बस्ती वीरान हो जाती है। और जब दिल उजड़ जाता है तो फिर अल्लाह में रगबत नहीं होती, अल्लाह के रसूल में रगबत नहीं रहती, फिर हमदर्दी और खैरखाई में रगबत नहीं रहती, फिर आपस में मोहब्बत है बाकी नहीं रहती। इसलिए ये तो हमारी सबसे पहले दुनिया बनाने वाली किताब है, इससे हमारी पहले दुनिया समर जाएगी। कुरान को अहमियत दे, खुद भी सीखे, बच्चों को सिखावे, घर की औरतों को सिखावे। इसलिए आप हजरात से सबसे गुजारिश है कि कुरान को सही करें, घर वालों का कुरान सही करवावे। और जो भाई जमातों में जा रहे, एक काम करना है, खिदमत, अपनी खिदमत खुद करें, अपने साथियों की खिदमत करें। खिदमत बहुत बड़ा अमल है। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बड़े आदमी थे, सारे इंसानों में सबसे अफजल इंसान है, सैयदुल बशर है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से खिदमत करते थे, अपने घर में झाड़ू लगा देते थे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मेरे घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंध देते थे, बकरी का दूध निकाल देते थे, कोई मेहमान आता तो मेहमान को अपने हाथ से खिलाते थे, खिदमत करते थे। सफर में जाते अपने साथियों के साथ तो सबके जिम्मे काम आता था, आप अपने जिम्मे भी कुछ काम लेते थे और खिदमत करते थे। खिदमत करें, अपनी खिदमत खुद करें, अपने साथियों की खिदमत करें, जिस बस्ती में जावे बस्ती वालों की खिदमत करें। खिदमत बहुत बड़ा अमल है, खिदमत से आदमी को महबूबियत मिलती है। जो भी आदमी खिदमत करता है मोहल्ले में, बस्ती में, लोगों की, सब उसको चाहते हैं, अच्छा आदमी। लेकिन इतना है कि खिदमत बेलौस हो, बेगरज हो, खिदमत से सिर्फ अल्लाह की जात मकसूद है, बाकी कुछ नहीं चाहते, न ओहदा चाहते हैं, न डिग्री चाहते हैं, न कुर्सी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की रजा के वास्ते जिस वक्त का जो मौका होगा हम लोगों की खिदमत करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के कामों में से काम है कि आप लोगों की खिदमत करते थे, अपने माल से भी, अपनी जान से भी, और खुशी से कुछ नहीं चाहते थे, बल्कि हमेशा आप एहसान करने में पहल करते थे। और आखिर उम्र में आप पर जिसका एहसान था, आपने सबके एहसान का बदला चुका दिया, किसी का एहसान अपने जिम्मे नहीं रखा। किसी ने चार आने का एहसान किया था, आपने उसको 2 रुपए दे दिए। किसी ने मामूली एहसान किया था, आपने उसको और ज्यादा दे दिया। किसी का एहसान अपने ऊपर, सबकी खिदमत की जिंदगी पर, खिदमत का एक अमल है। तो दावत, तालीम व ताल्लुम, जिक्र व इबादत और खिदमत, ये 4 बुनियादी काम है जो करने हैं। और 6 सिफात हैं, उन सिफतों पर मश्क करनी है। ईमान, नमाज, इल्म और जिक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत और अल्लाह के नाम पर जानो माल लगाने की मश्क है। इसके लिए 5 गश्त हैं, उमूमी गश्त, खसूसी गश्त, तालीमी गश्त, तश्कीली गश्त और वसूली गश्त। ये 5 गश्त जमात में जाकर रोजाना करने हैं। इन गश्तों के रास्ते लोगों के पास जाना है। ये सारी मेहनत तो अपने आप पर हुई, तालीम में बैठना, नमाज पढ़ना, कुरान सही करना, खिदमत करना, अपनी जात पर मेहनत है। लोगों पर मेहनत के लिए 5 किस्म के गश्त हैं। इन गश्तों के जरिए से लोगों के पास जाना है। हमारा मैदान मेहनत मस्जिद के बाहर है। मस्जिद में तो इबादत और तालीम के लिए जमा हो जाएंगे, खाने और आराम के लिए मस्जिद के बाहर का हिस्सा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हमारी मेहनत का मैदान मस्जिद के बाहर है। हुजूर अलैहिस्सलाम का मैदान मेहनत मस्जिद के बाहर था। 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, मक्का में कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद ही नहीं थी। मस्जिद हराम है एक, जहां पर कब्जा था मुशरिकीन का, वहां तो बुत रखे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज किया, 13 साल तक बाहर गलियों में, चौराहों पर, बाजार, जिल मिजन्ना और उकाज नाम के 2 बाजार थे मक्का में, हुजूर वहां तशरीफ ले जाया करते थे, गलियों में मेहनत करते थे, चौराहों पर जाते थे, जवानों से मिलते थे, गुलामों से मिलते थे, सरदारों से मिलते थे। अय्याम हज में, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा में, मिना, आरफात, मुज़दलिफा में, जहाँ आने वाले मेहमानों के खेमे लगते थे काफलों के, वहां जाकर लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाते थे, अपनी रिसालत के बारे में उनको बताते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा।
तो इन गश्तों के रास्ते से मेहनत है, घर घर जाना है, एक एक मुसलमान के घर जाकर उसके पास बैठना है। और ये जो बातें मैंने अर्ज की, ईमान की, नमाज और आमाल की, अखलाक और खिदमत की, इखलास और एहसान की, यही बातें दोहरा दोहरा कर एक एक से इस नियत से बात करनी है, ये सारी बातें मेरे अंदर आ जाए, इसके लिए उसको बार बार बोलना है। जमातों में है तो वहां जिस मस्जिद में कयाम हो, मस्जिद के अतराफ के घरों पर जावे, एक एक मुसलमान से मिले, दो दिन तीन दिन एक मस्जिद में कयाम करेंगे और घर घर जाकर एक एक मुसलमान से मुलाकात करके ये सारी बातें कहकर उसके अंदर दीन पर चलने की और दीन की मेहनत करने की तलब बेदार करेंगे। हर मुसलमान के अंदर सोया हुआ जज्बा है, उस जज्बे को जगाना है। हर मुसलमान के अंदर जज्बा है लेकिन वो जज्बा सो चुका है, उस सोए हुए जज्बे को बेदार करना है फजाइल के रास्ते से। फजाइल सुना सुना कर एक एक को तैयार करना है नमाज के लिए, आमाल के लिए, दीन की मेहनत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के लिए एक एक मुसलमान को तैयार करना है। फिर उनकी नकद तश्कील करके चार चार महीने के लिए, चिल्लों के लिए, और आखिरी दर्जे में कम अज कम हर मस्जिद से तीन तीन दिन की जमात जरूर निकाले और दौरान कयाम दो तीन दिन मेहनत करके उस मस्जिद में मस्जिदवार जमात जमावे और वहां रोजाना की मेहनत शुरू हो। इसके लिए मकामी लोगों को अपने साथ लेकर अमली तौर पर मुलाकातों में उनको बतावे कि इस तरह करना है, तालीम करके बतावे, मशवरा करके समझावे, गश करके बतावे कि इस तरह गश करना है ताकि जमात के पीछे उस बस्ती में, उस मस्जिद में मकामी काम जिंदा हो जाए। इस तरतीब पर हमें अपना वक्त गुजारना है। मकाम पर जो लोग वापस जा रहे हैं वो अपने बस्ती में रहकर रोजाना का मशवरा अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़ जाए। ये मस्जिद की जमात कोई कमेटी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई मिंबर साजी की मेहनत नहीं है, ये उम्मत की मेहनत है, पूरी उम्मत की मेहनत। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पीछे अपनी उम्मत के लिए इस काम को वरासत में छोड़ के गए, ये मीरास है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका दीन और दीन की मेहनत उम्मत के लिए मीरास है, हम सब उसके हिस्सेदार हैं। ये कोई ग्रुप नहीं है तबलीगी जमात और मस्जिदवार जमात कोई दो पांच आदमियों का काम नहीं है, बस्ती के तमाम मुसलमानों का काम है कि सब किसी एक नमाज के बाद रोजाना मिलजुल कर बैठ कर अपने और अपनी बस्ती के और पूरे आलम के इंसानों के दीन से मुतालिक सोचें और पहली कोशिश ये करें कि बस्ती के 100% लोग नमाजी बन जावे। उसी के साथ कोशिश करें कि 100% लोग दीन की मेहनत करने वाले बन जावे, घर घर में जिक्र तिलावत हो, इबादत की फिजा बन जावे और सारी लड़ाइयां झगड़े बस्तियों से खत्म हो जाए। जब अल्लाह के लिए जमा होना शुरू हो, अभी हमारा जमा होना कौमियत की बुनियाद पर है कि अंसारी जमा हुए हैं, मंसूरी जमा हुए हैं, सैयद जमा हुए हैं, ये सैयदों का इबादत खाना है, ये मंसूरियों का जमात खाना है। ठीक है, अपनी सामाजिक जरूरतों के वास्ते इसको करते हैं, शादी ब्याह के लिए अपनी जगह पर है, लेकिन ये हमारी बुनियादें सही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पीछे उम्मत छोड़ कर गए, उम्मत जिस उम्मत में मुहाजिर थे, अंसार थे, अरब भी थे, अजम भी थे, औस भी थे, खजरज भी थे और मुहाजिरीन के मुख्तलिफ कबाइल भी थे और दुनिया के मुल्कों से आकर इस्लाम कबूल करने वाले लोग भी थे, उन सबको अपने पीछे छोड़कर हज्जतुल वदा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि मैं अपने पीछे ये उम्मत छोड़कर जा रहा हूँ और सारी असबियतों को मैं अपने पैरों तले रौन देता हूँ। ये मस्जिद की जमात उसकी मेहनत है कि उम्मत उम्मत बन जावे, कि मस्जिद में अंसारी भी बैठा है, मंसूरी भी बैठा है, सैयद भी है, पठान भी है, गरीब भी है, मालदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, सब जमा हो जाकर अपने में से किसी एक आदमी को फैसल बनाकर बैठा है कि भाई आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। हमारी समाज कहेगी ऐसा नहीं, हमारे कौम कहेगी ऐसा नहीं, हमारे बाप दादा ने कहा ऐसा नहीं, अल्लाह रसूल जो कहेंगे वो करेंगे। अल्लाह रसूल की जो तालीम है वो हमें करनी है, उसके लिए जमा होना है मस्जिद में और फिर नमाजों को कायम करना है और हुजूर के तरीकों को जिंदा करना है, हुजूर वाली शरीयत को नाफिज करना है, ये इसकी मेहनत है। फिर दो दो तीन तीन की जमातें बनाकर घर घर जाकर इसी की आवाज लगानी। हमारे कौम की कोई आवाज नहीं, हमारे समाज की कोई आवाज नहीं, सबसे बड़ी आवाज अल्लाह की आवाज है, रसूलुल्लाह की आवाज है, वही आवाज लगानी। घर घर जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत की तरफ बुलाना है। इसके लिए रोजाना 2.5 घंटा है और हफ्ते में गश करना है कि सारे लोग जमा होकर इज्तिमाई तौर पर शाम को असर मगरिब या मगरिब ईशा का वक्फ़ारिग करके उमूमी गश करें, घर घर जावे, एक एक मुसलमान से बात करें
اور فضا بناوے بستی میں, اس سے بستی میں فضا ہموار ہوگی, لوگوں میں دین کی طرف طلب پیدا ہوگی اور دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. عمومی گشت بڑا جاندار عمل ہے, بہت طاقت ہے اس میں. اگر اچھی طرح گشت قابو میں آ گئے تو بستیوں کے بڑے بڑے فتنے اس سے دفع ہو جائیں گے, بڑے بڑے فتنے دفع ہو جائیں گے اور لوگوں میں طلب پیدا ہوگی, جوانوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, گشتوں کے راستے سے دین پر چلنے کی طلب پیدا ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ پابندی سے گشت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اور ہر مہینے 3 دن لگا گے. اچھا, دوسرا ایک گشت ہے, اپنی پڑوس کی بستیوں کی خبر لیں. بہت ساری قرب و جوار میں بستیاں ہیں, 15 گھر مسلمانوں کے, 20 گھر ہیں, 25 گھر ہیں, 50 گھر ہیں, نہ مسجد ہے نہ عبادت خانہ ہے, یا مسجد عبادت خانہ ہے لیکن دین کی محنت نہیں ہے وہاں پر. ایسی بستیوں میں جا کر گشت کر کے وہاں بھی اعمال دعوت کو شروع کریں, دین کی محنت کو وہاں بھی شروع کریں تاکہ ان بستیوں میں دین کے پھیلنے کا انتظام ہو, دین کی حفاظت کا انتظام ہو. اس کے لیے دوسرا گشت ہے. اور مہینے میں 3 دن لگا رہے, 27 دن اپنے حلال کاروبار کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کی, ماں باپ کی خدمت کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ اپنے مقامی کام کو کرتے رہیں. اور مہینے میں 3 دن فارغ کر کے اپنے ساتھ اپنے نئے نئے دوستوں کو جو دین سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں, ماں باپ کی خدمت سے دور ہیں اور اخلاقی لائن سے جن کی زندگیوں میں زوال ہے, ایسے نئے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کریں اور ان کو 3 دن لے جاوے 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں, دعوت کی فضاؤں میں, تعلیم کے حلقوں میں. جب وہ آئیں گے تو دل کی زمین نرم ہوگی. جب دل کی زمین نرم ہوگی تو آدمی جان دینے کو تیار ہو جائے. ابھی دل میں سختی پیدا ہوئی تو باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں, ماں سے بات کرنے کو راضی نہیں کہ دل میں سختی ہے. اس سختی کو دور کرنے کا راستہ ایک مسجد کے ماحول میں, اس کو تعلیم کے حلقوں میں, گشتوں میں, دعوت میں, ذکر میں, عبادت میں, اس میں لے جائیں گے, اس کے دل میں نرمی آئے گی. اب گھر جا کر معافی مانگے گا وہ. اس لیے اور ہم بھی اس کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہمارے قلوب بھی نرم رہیں اور آخرت کی یاد مستحضر رہے اور آخرت کے تذکرے ہیں. تعلیم میں پھر آخرت کا تذکرہ ہے تو ہم اپنی ملاقاتوں میں, اپنے گشتوں میں آخرت کو بولیں گے. قبر کی باتیں کریں آپس میں, قبر کی باتیں کریں, آخرت کی باتیں کریں, جنت کی باتیں کریں کہ جنت میں اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں, دنیا چند روزہ ہے, آخرت میں ہمیشہ کی جنت ہے جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, کوچ کرنے کی جگہ ہے. کوئی 10 سال میں, کوئی 20 سال میں, کوئی 25 سال میں یہاں سے کوچ کر کے جاتا ہے. آگے سب کو جمع ہونا ہے محشر میں. قبر ایک منزل ہے درمیان میں, پھر محشر میں جمع ہونا ہے سب کو, جس دن کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ قیامت کے دن سب کو جمع ہونا ہے. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, کہ میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوں, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اس دن کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کا دن اصل دن ہے, جس دن حساب ہوگا, کھوٹا کھرا سب سامنے آ جائے گا. یہاں دنیا میں تو آدمی ظلم کر کے اپنے وکیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر دیتا ہے, کسی کا حق دبا کر آدمی غلط کاغذات بنا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیتا ہے, لیکن وہاں اللہ کے دربار میں, اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا, وہاں ظلم نہیں ہوگا. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ذرہ برابر نیکی لے کر آیا ہے وہ اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے, اس کو اس کا بدلہ ملے گا. جو ذرہ برابر برائی لایا ہے تو اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا. وہاں حقوق کی ادائیگی ہوگی, اللہ انصاف کی ترازو قائم کرے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج انصاف کی ترازو قائم کریں گے, وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا, جو کیا ہے وہ آدمی پائے گا. اس لیے اس آخرت کا تذکرہ کرے تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہو جاوے. وہی آخرت کا ایک ڈر ہے جس سے آدمی ڈر کر اپنا عمل صحیح کرے گا. اس لیے کوشش کریں کہ آخرت کا تذکرہ کریں, جنت کی باتوں کو سنیں, جہنم کے تذکرے کو کریں, میدان محشر میں کیا ہوگا, حساب کا کیا عالم ہوگا, ان چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہوں سے پھر نفرت ہوگی, نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی, دنیا کی محبت کٹے گی اور اللہ کی طرف, اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوگی اور اپنی آخرت اچھی سے اچھی بنانے کی فکر پیدا ہو جائے گی. اسی کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی اس محنت میں اپنے آپ کو لگاویں. جو ابھی جا رہے ہیں اللہ ان کے نکلنے کو مبارک فرماوے,
جو بھائی ابھی جماعت میں نہیں جا پا رہے ہیں وہ طے کر کے جاوے کہ انشاءاللہ گھر رہنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ گھر جا کر انشاءاللہ جماعت میں جانے کی تیاری کر کے جلد سے جلد اپنی ترتیب بنا کر چار چار مہینے لگائیں گے. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اور جب تک چار مہینے جا رہے ہیں وہاں تک جو میں نے عرض کیا مقامی اعمال میں خود اپنے اعزاز سے شریک ہوتے رہیں اور گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر والوں پر محنت کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. بھائی جماعت میں جانے والے کھڑے ہو جاؤ, جو حضرات بھی جماعتوں میں جانے والے ہیں جہاں بھی ہیں سب کھڑے ہو جاؤ.